एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं तैयारी जोन्स के एक बहुत ही चर्चित उपन्यास एन अमेरिकन मैरिज पर।
जी हाँ, ये उपन्यास काफी सराहा गया है।
बिल्कुल, तैयारी जोन्स मतलब आज के अमेरिकी साहित्य में एक बहुत महत्वपूर्ण आवाज मानी जाती है, खासकर जब वो आधुनिक अफ्रीकी अमेरिकी जीवन के बारे में लिखती हैं।
हाँ, उनकी पकड़ इन विषयों पर बहुत मजबूत है।
और ये उपन्यास एन अमेरिकन मैरिज जो 2018 में आया, शायद उनका सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला काम है। इसे ओपराज बुक क्लब में भी चुना गया था और
2019 में विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन भी मिला था इसे।
सही कहा, और इसका आना भी एक खास समय पर हुआ था। मुझे लगता है उस वक्त अमेरिका में नस्लीय अन्याय और मास इनकार्सरेशन,
हाँ, मतलब जो बड़ी संख्या में लोगों को, खासकर अश्वेत पुरुषों को, जेल भेजा जाता है।
हाँ, उन मुद्दों पर काफी बहस चल रही थी। तो आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। इसके जो मुख्य किरदार हैं रॉय, सेलेस्टियल और आंद्रे, उनकी यात्रा को समझेंगे और देखेंगे कि कहानी क्या बड़े सवाल खड़े करती है।
कहानी ज्यादातर एटलांटा, जॉर्जिया और लुइजाना के एक छोटे से कस्बे एलॉय में घटती है। शुरुआत में हमें वो न्यू साउथ का सपना दिखता है ना, मतलब एक उभरता हुआ प्रगतिशील दक्षिणी अमेरिका।
हाँ, जहाँ रॉयर और सेलेस्टियल जैसे पढ़े लिखे महत्वाकांक्षी अफ्रीकी अमेरिकी युगल हैं। रॉय एक युवा एग्जीक्यूटिव, सेलेस्टियल एक कलाकार, गुड़िया बनाती है वो।
बिल्कुल, एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद।
लेकिन यहीं पर तायारी जोन्स उस सपने की कह सकते हैं नाजुकता दिखाती हैं, खासकर अश्वेत लोगों के लिए।
हाँ, क्योंकि उनकी दुनिया तो जैसे पल भर में बिखर जाती है।
जब रॉय पर वो झूठा आरोप लगता है लुइजियाना में एक श्वेत महिला के बलात्कार का,
और यहीं से कहानी अमेरिकी न्याय व्यवस्था के अंदर जो नस्लीय पूर्वाग्रह हैं उन पर सीधे सीधे उंगली उठाती है।
बिल्कुल,
और ये घटना एक बहुत ही मुश्किल सवाल खड़ा कर देती है ना, कि क्या एक रिश्ता, एक शादी
ऐसे अन्यायपूर्ण अलगाव का बोझ सह सकती है।
हाँ, तो ये सिर्फ एक गलत सजा की कहानी नहीं रह जाती।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
ये उसके बाद की कहानी है। प्यार, वफादारी, कर्तव्य, पहचान, ये सारे सवाल उलझ जाते हैं।
तो चलिए शुरू से देखते हैं, अटलांटा में उनकी जिंदगी कैसी थी, रॉय और सेलेस्टियल के बीच का रिश्ता कैसा था।
देखिए, उनमें प्यार था, महत्वाकांक्षाएं थी, और जैसे आम पति पत्नी में होता है छोटी मोटी नोकझोंक भी थी। उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि भी थोड़ी अलग थी। रॉय एक वर्किंग क्लास परिवार से था, जबकि सेलेस्टियल के पिता वो एक आविष्कारक थे, तो उसका माहौल थोड़ा ज्यादा प्रिविलेज्ड था।
अच्छा,
और कहानी में ये भी इशारा है कि शादी से पहले रॉय एक बार मतलब बेवफाई कर चुका था, तो एक हल्का सा तनाव पहले से मौजूद था।
यानी एक वास्तविक रिश्ता था जिसमें अपनी परतें थी, कोई एकदम परफेक्ट तस्वीर नहीं।
बिल्कुल, और फिर आता है वो निर्णायक मोड़, वो लुइजियाना की यात्रा।
हाँ, एलॉय, वो रॉय के माता पिता बिग रॉय और ओलिव से मिलने गए था, होटल में रुके थे। कमरे में उनकी कुछ बहस हुई, जिसके बाद रॉय थोड़ी देर बाहर टहलने चला गया, और फिर देर रात पुलिस आ गई
और रॉय गिरफ्तार बिना किसी ठोस वजह के, बस आरोप के आधार पर।
हाँ, बलात्कार का आरोप, सदमा, अविश्वास, डर। रॉय के पास एली भी थी, वो कह रहा था कि वो उस वक्त कहीं और था।
लेकिन उसकी कौन सुनता है, खासकर उस माहौल में।
वही हुआ, श्वेत पीड़िता की गवाही को ज्यादा वजन दिया गया, सबूत कमजोर थे, बचाव भी शायद उतना मजबूत नहीं रहा।
नतीजा,
रॉय दोषी पाया गया, 12 साल की सजा।
12 साल, एक उभरते हुए इंसान की जिंदगी
तबाह हो गई। वो जेल चला गया और सेलेस्टियल अकेली रह गई, एक ऐसे भविष्य के साथ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी।
ये सिर्फ रॉय के साथ अन्याय नहीं था, ये उनके रिश्ते पर भी एक भयानक आघात था। और यहाँ से कहानी तीन अलग अलग नजरियों से खुलती है ना, रॉय, सेलेस्टियल और आंद्रे।
हाँ, और ये तरीका बहुत असरदार है। पाठक किसी एक का पक्ष नहीं ले पाता, आप हर किसी की मजबूरी, उसके दर्द को महसूस करते हैं।
पहले रॉय की बात करते हैं, जेल जाने से पहले वो कैसा था, महत्वाकांक्षी, स्वाभिमानी।
हाँ, सेलेस्टियल से बहुत प्यार करता था, अपनी वर्किंग क्लास जड़ों से ऊपर उठना चाहता था, लेकिन जेल, जेल उसकी पहचान छीन लेती है। वो एग्जीक्यूटिव रॉय हैमिल्टन से कैदी नंबर बन जाता है।
और यहाँ उपन्यास अश्वेत पुरुष होने के दबावों को भी दिखाता है, जिसे ब्लैक मस्कुलिनिटी कहते हैं, उसका आत्मसम्मान, उसकी पहचान, सब कुछ
सब दांव पर लग जाता है। उसका पूरा वजूद अब बस जेल में टिके रहने और अपनी शादी को बचाने की कोशिश में समझ जाता है। शादी जैसे उसके पुराने जीवन का आखिरी सहारा हो।
हाँ, वो उसे पकड़े रखना चाहता है।
बिल्कुल, उसके खत देखिए, शुरू में उनमें उम्मीद है, प्यार है, लेकिन धीरे धीरे हताशा आने लगती है। उसे लगता है सेलेस्टियल दूर जा रही है।
और फिर 5 साल बाद जब उसकी सजा पलट दी जाती है, वो रिहा होता है।
हाँ, अचानक, और वो वापस आता है इसी उम्मीद में कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, वो अपनी जिंदगी, अपनी पत्नी, सब वापस पा लेगा।
लेकिन क्या ऐसा होता है? इससे पहले कि हम वहां पहुंचे, सेलेस्टियल की कहानी समझना जरूरी है। रॉय के जाने के बाद उसका क्या हुआ?
सेलेस्टियल एक कलाकार है। वो गुड़िया बनाती है, खास तरह की। वो काफी स्वतंत्र और सोचने वाली महिला है। रॉय से प्यार करती थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रॉय के जेल जाने के बाद वो एक बहुत ही मुश्किल कश्मकश में पड़ जाती है। एक तरफ पति के प्रति वफादारी का वादा,
और दूसरी तरफ अपनी जिंदगी, अपनी जरूरतें, भावनात्मक जुड़ाव, साथ।
हाँ, एक भरपूर जीवन जीने की इच्छा। उपन्यास उसे किसी देवी की तरह नहीं दिखाता, बल्कि एक इंसान की तरह दिखाता है जो एक नामुमकिन स्थिति में फंस गई है।
शुरू में वो क्या करती है? वफादार रहती है।
हाँ बिल्कुल, शुरू में वो पूरी तरह से समर्पित है। रॉय को खत लिखती है, पैसे भेजती है, उसकी रिहाई के लिए कोशिश करती है। लेकिन साल बीतते हैं
और इंतजार लंबा होता जाता है।
हाँ, और इसी दौरान उसका अपना काम, उसकी कला, वो फलने फूलने लगती है। उसकी गुड़ियों की पहचान बनती है, उसका करियर आगे बढ़ता है। ये उसे एक मकसद देता है,
एक तरह की आजादी भी
कह सकते हैं। और यही वो सवाल उठता है कि क्या वो अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए रोक कर रख सकती है?
फीमेल एजेंसी का सवाल।
बिल्कुल, वो इस अनिश्चित इंतजार में खुद को कैद नहीं रख पाती। धीरे धीरे वो सहारे के लिए आंद्रे की तरफ मुड़ती है।
आंद्रे, उसका बचपन का दोस्त।
हाँ, जो हमेशा उसके करीब रहा है। रॉय की गैर मौजूदगी में वो उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, और समय के साथ उनकी नजदीकी बढ़ती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है।
यहाँ सेलेस्टियल का किरदार बहुत जटिल हो जाता है। उसे जज करना आसान लगता है, पर उपन्यास हमें उसकी स्थिति दिखाता है।
हाँ, और उसकी गुड़ियाएं, वो भी जैसे प्रतीक बन जाती हैं, उसकी रचनात्मकता का, उसकी आजादी का,
शायद उन बच्चों का भी जो अब नहीं होंगे।
हाँ, ये भी एक व्याख्या हो सकती है। वो उसके नए जीवन का प्रतीक है।
उसकी अपनी कश्मकश उसके विचारों में झलकती है। वो एक जगह सोचती है, अ मैरिज इज मोर देन योर हार्ट, इट्स योर लाइफ, एंड वी आर नॉट शेयरिंग अ लाइफ।
मतलब शादी सिर्फ दिल का नहीं, जिंदगी का सौदा है, और हम जिंदगी साझा नहीं कर रहे। ये एहसास बहुत दर्दनाक है कि प्यार शायद काफी नहीं है।
और वो दूसरी बात भी कहती है कि पति वो है जो मौजूद हो। आई हैव अ हस्बैंड बट आई एम नॉट अ वाइफ।
हाँ, ये उसकी कानूनी स्थिति और असलियत का फर्क है।
और फिर है आंद्रे, इस कहानी का तीसरा कोना। उसे कैसे देखा जाए? क्या वो विलेन है?
नहीं, उपन्यास उसे विलेन नहीं बनाता। वो सेलेस्टियल का बचपन का दोस्त है। उनके बीच एक गहरा पुराना कनेक्शन है, रॉय से भी पहले का।
और वो हमेशा से सेलेस्टियल को पसंद करता था।
हाँ, मन ही मन। जब रॉय जेल जाता है तो वो स्वाभाविक तौर पर सेलेस्टियल का सहारा बनता है। वो उसके लिए वहां मौजूद है शारीरिक रूप से। वो शायद रॉय की तरह बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है, लेकिन उसमें एक स्थिरता है, एक जानी पहचानी जमीन है।
तो वो कोई मौका परस्त नहीं, बल्कि एक ठीक ठाक इंसान है जो मुश्किल हालात में फंस गया है।
हाँ, कह सकते हैं। उसका और सेलेस्टियल का रिश्ता सच्ची देखभाल और दुख बांटने से पनपता है। वो उनके बचपन के आंगन का पेड़, वो जैसे उनके गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। पर हाँ, उसकी मौजूदगी कहानी को और उलझा देती है।
कहानी का जो दूसरा हिस्सा है, जहाँ वो सिर्फ खतों से बात करते हैं, वो बहुत पावरफुल है।
हाँ, वो एपिस्टोलरी सेक्शन, वो उनके बीच की बढ़ती हुई दूरी को बहुत अच्छे से दिखाता है, शारीरिक दूरी भी और भावनात्मक भी।
शुरू के खतों में क्या होता है?
शुरू में तो प्यार है, उम्मीद है, एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश है। रॉय जेल की मुश्किलों से लड़ रहा है सेलेस्टियल की यादों के सहारे। सेलेस्टियल भी अपना अकेलापन, अपना इंतजार बयां करती है।
लेकिन वक्त के साथ?
वक्त के साथ खतों का लहजा बदलता है। रॉय की दुनिया सिकुड़ती जाती है, उसके खत जैसे एक ही टर्रे पर चलने लगते हैं।
और सेलेस्टियल की दुनिया?
वो फैल रही है, उसका करियर, उसकी पहचान बन रही है। उनके जीवन के रास्ते बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं, ये खतों में साफ दिखता है। तनाव बढ़ता है।
रॉय को ये दूरी महसूस होती होगी।
हाँ, और वो ज्यादा अधिकार जताने लगता है, ज्यादा डिमांडिंग हो जाता है। सेलेस्टियल अपराध बोध से भर जाती है, लेकिन वो असलियत से मुंह नहीं मोड़ पाती। उसे एंड्रे से प्यार हो जाता है।
और फिर वो खत आता है।
हाँ, वो सबसे मुश्किल खत, 5 साल बाद, जब सेलेस्टियल आखिरकार रॉय को लिखती है कि वो अब उस तरह से उसकी पत्नी नहीं रह सकती।
रॉय का क्या रिएक्शन होता है?
उसका दिल टूट जाता है, गुस्सा, दर्द। इसके बाद उनके बीच खतों का आना जाना लगभग बंद हो जाता है, शादी बस नाम की रह जाती है।
और ठीक इसी वक्त के आसपास रॉय रिहा हो जाता है।
हाँ, अचानक 5 साल बाद वो आजाद है और वो अटलांटा लौटता है।
क्या सोचकर लौटता है?
यही कि वो अपनी जिंदगी वापस पाएगा, अपनी पत्नी को वापस पाएगा। यहीं से कहानी का तीसरा और आखिरी हिस्सा शुरू होता है,
टकराव।
हाँ, जबरदस्त टकराव। रॉय की वापसी सेलेस्टियल और आंद्रे की बनाई दुनिया में भूचाल ला देती है। उसे पता चलता है कि सेलेस्टियल अब आंद्रे के साथ रहती है।
इसके बाद का सामना बहुत मुश्किल रहा होगा।
बहुत। सालों का दबा हुआ गुस्सा, दुख, अधूरी इच्छाएं, सब बाहर आ जाता है। उपन्यास यहाँ किसी को सही या गलत नहीं ठहराता।
हाँ, तीनों के नजरिए दिखाता है। रॉय का धोखा खाया हुआ महसूस करना, सेलेस्टियल की कश्मकश, आंद्रे का बचाव और अपराध बोध।
बिल्कुल। फिर सुलझने की कोशिश होती है। रॉय अपने पिता बिग रॉय से बात करता है।
बिग रॉय, जिसने खुद अपने परिवार को छोड़ा था, वो क्या सलाह देता है?
वो उसे एक बहुत मुश्किल सलाह देता है, जाने दो, लेट गो।
और सेलेस्टियल, उसे फैसला लेना पड़ता है।
हाँ, और वो बहुत दर्द के साथ ये फैसला लेती है कि वो रॉय से शादी खत्म करेगी और आंद्रे के साथ रहेगी।
तो कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। अंत बहुत यथार्थवादी है, थोड़ा कड़वा, थोड़ा मीठा। रॉय अटलांटा छोड़कर जा रहा है नई शुरुआत के लिए। वो अन्याय को स्वीकार करता है, लेकिन जिंदगी की नई हकीकत को भी।
ये दिखाता है कि कुछ जख्म शायद कभी नहीं भरते।
हाँ, लेकिन ये इंसानी जज्बे की कहानी भी है। जिंदगी रुकती नहीं, वो रास्ते बना लेती है त्रासदी के बाद भी।
अगर हम मुख्य विषयों पर दोबारा नजर डालें तो सबसे बड़ा मुद्दा तो अमेरिकी न्याय व्यवस्था और नस्लवाद का है।
हाँ, कि कैसे ये सिस्टम सिर्फ व्यक्ति को नहीं, पूरे रिश्ते, परिवार, समुदाय को तोड़ता है।
दूसरा, शादी का मतलब क्या है? वादे बनाम असलियत, साथ होना कितना जरूरी है?
बिल्कुल। फिर पहचान के सवाल हैं, अश्वेत पुरुष की पहचान, स्त्री की पहचान, कर्तव्य और अपनी खुशी के बीच का चुनाव।
आंद्रे का किरदार भी वफादारी और नैतिकता पर सवाल उठाता है।
और कला की भूमिका, सेलेस्टिलिया की गुड़ियाएं, कैसे वो उसकी अभिव्यक्ति और आजादी का जरिया बनती हैं।
रॉय का वो विचार घर के बारे में, होम इज अ प्रॉमिस, अ प्लेस वे यू आर फ्रॉम बट ऑल्सो अ प्लेस वे यू आर गोइंग।
हाँ,
वो घर के वादे के लिए जी रहा था, पर लौटा तो वो घर ही बदल चुका था।
इस कहानी को पढ़कर या सुनकर मन में कई भाव आते हैं, गुस्सा भी आता है, सहानुभूति भी होती है।
हर किरदार के लिए।
हाँ,
कोई विलन नहीं है। हम सोचने लगते हैं कि वफादारी कहाँ तक, ऐसे हालात में कोई क्या करता।
ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे समाज की बड़ी ताकतें हमारे निजी जीवन, हमारे रिश्तों को, मतलब कितना गहरा असर डालती हैं।
जी हाँ।
लेकिन साथ ही ये इंसानी भावनाओं की जटिलता और दुख में भी टिके रहने की हमारी क्षमता का एक शक्तिशाली चित्रण है। त्रासदी के बाद भी अर्थ ढूंढने की कोशिश।
और शायद ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ देती है कि जब समाज ही अन्याय करे तो क्या रिश्तों में वफादारी की हमारी पुरानी परिभाषाएं मायने रखती हैं?
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।